आज के इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब बात पर गौर करने वाले हैं। सोचिए कि दुनिया के सबसे मशहूर धर्म ग्रंथों में से एक की सबसे प्रसिद्ध लाइन का मतलब सिर्फ अनुवाद की वजह से पूरी तरह बदल गया हो।
हाँ, और वो भी सिर्फ एक अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर की वजह से। मतलब ये सच में हैरान करने वाला है।
बिल्कुल, सदियों तक लोग एक ऐसी लाइन पर रोते रहे, प्रार्थना करते रहे और खूब खूबसूरत संगीत बनाते रहे जिस पर शायद मूल लेखक ने कभी बात ही नहीं की थी।
सही कहा।
हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जब हम कोई पुराना ग्रंथ पढ़ते हैं ना, तो उसका जो छपा हुआ अनुवाद है वो एक सटीक रिपोर्ट की तरह होता है।
हाँ, हमें लगता है कि जो लिखा है उसका बस एक ही सीधा अर्थ हो सकता है।
बिल्कुल, इंसानी दिमाग हमेशा जटिल चीजों को सरल बनाना चाहता है। हम चाहते हैं कि हर पुरानी कहानी, हर प्राचीन पुकार हमारे आज के सांचे में बिल्कुल फिट बैठ जाए, ताकि उसे समझना आसान हो जाए। लेकिन जब हम इतिहास और धर्म और प्राचीन भाषाओं के अनुवाद की दुनिया में उतरते हैं, तो ये सीधा साधा चश्मा काम नहीं आता।
एकदम सही बात है।
तो आज हमारी इस गहन चर्चा का विषय है बुक ऑफ जॉब, यानी अय्यूब की किताब का अध्याय 19 आयत 25। ये लाइन पूरी दुनिया में मशहूर है कि मुझे पता है कि मेरा उद्धारकर्ता जीवित है।
हाँ, और आज हम डॉक्टर जॉन वॉल्टन के विस्तृत शोध और उनके व्याख्यानों के आधार पर ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे अनुवाद की छोटी सी प्रक्रिया ने इस लाइन के असली अर्थ को ढक दिया है।
बिल्कुल, और हम ये भी समझेंगे कि असल में जॉब किस चीज की मांग कर रहे थे।
क्योंकि देखिए, ये समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम मूल संदर्भ को भूल जाते हैं ना, तो हम अक्सर उस दर्द को, उस गुस्से को नहीं सुन पाते जो वास्तव में उस ग्रंथ में मौजूद है।
हाँ, हम उसकी धार को ही कुंद कर देते हैं।
बिल्कुल।
तो चलिए सीधे उस चौंकाने वाले तथ्य पर आते हैं जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। डॉक्टर वॉल्टन अपने शोध में बताते हैं कि कैसे अंग्रेजी अनुवाद में सिर्फ एक कैपिटल अक्षर ने हमारी पूरी सोच की दिशा ही बदल दी।
हाँ, ये बहुत ही मजेदार हिस्सा है। अंग्रेजी में जब हम रिडीमर यानी उद्धारकर्ता पढ़ते हैं तो उसका पहला अक्षर अक्सर कैपिटल लिखा होता है।
हाँ, कैपिटल आर।
बिल्कुल, और जैसे ही हम कैपिटल लेटर देखते हैं, हमारे दिमाग में तुरंत एक ईश्वरीय स्वरूप की छवि बन जाती है।
लेकिन मूल हिब्रू भाषा की लिपि में तो कैपिटल अक्षर होते ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं होते, ना ही उनमें शुरुआत में स्वर या वॉवल्स होते थे। ये तो अनुवादकों का अपना नजरिया है जो उन्होंने हम तक पहुंचाया है।
अच्छा, तो मतलब ये अनुवादकों की अपनी व्याख्या थी।
हाँ, क्योंकि अनुवाद कभी भी एक मशीन की तरह काम नहीं करता ना। ऐसा नहीं कि आपने एक शब्द डाला और दूसरी तरफ उसका सटीक विकल्प निकल आया।
अनुवाद हमेशा एक व्याख्या होती है।
सही कहा। जब सदियों बाद अंग्रेजी अनुवादकों ने उस प्राचीन हिब्रू शब्द का अनुवाद किया और उसे कैपिटल अक्षर के साथ लिखा, तो उन्होंने अनजाने में पाठकों को एक विशेष दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया।
उन्होंने उस शब्द को किसी दिव्य व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ दिया।
बिल्कुल, जबकि मूल हिब्रू भाषा अपनी बनावट में इसे बहुत ही सामान्य और खुले संदर्भ में रखती है।
तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो मूल हिब्रू शब्द आखिर है क्या
जी?
और जोब असल में किस संदर्भ में बात कर रहे थे? क्योंकि ये तो तय है कि जोब उस वक्त किसी दार्शनिक बहस के मूड में तो बिल्कुल नहीं थे।
बिल्कुल नहीं। उस शब्द को समझने के लिए हमें पहले जोब की उस वक्त की मानसिक और सामाजिक स्थिति को समझना होगा।
हाँ, वो बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे।
बहुत ही बुरे। जॉब कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं ढूंढ रहे हैं जो उन्हें ज्ञान दे। वे एक भयानक संकट में हैं। उन पर एक ऐसा आरोप लगा है जिसे वे सिरे से खारिज करते हैं।
उनकी संपत्ति, उनका परिवार, उनकी सेहत, सब कुछ उजड़ चुका है।
हाँ, वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिस पर पूरे समाज ने मुकदमा चला दिया है, इसलिए वे एक कानूनी वकील की तलाश कर रहे हैं।
एक कानूनी वकील मतलब ये कोई धार्मिक पुकार नहीं बल्कि एक कोर्टरूम ड्रामा जैसी स्थिति है।
बिल्कुल, इसे एक प्राचीन कोर्टरूम की तरह ही देखिए। और यहीं पर वो हिब्रू शब्द आता है गोयल।
गोयल?
हाँ, जब जॉब कहते हैं मेरा उद्धारकर्ता, तो मूल ग्रंथ में शब्द गोयल इस्तेमाल हुआ है।
अच्छा,
प्राचीन हिब्रू समाज में गोयल कोई आध्यात्मिक पद नहीं था। यह एक बहुत ही विशिष्ट कानूनी पद था। यह उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता था जो परिवार या कबीले के अधिकारों के लिए खड़ा होता था।
ये असल में कैसे काम करता था? कोई उदाहरण है इसका?
बिल्कुल, कल्पना कीजिए कि प्राचीन इसराइल में कोई व्यक्ति कर्ज में डूबकर अपनी पुश्तैनी जमीन खो देता है या उसे खुद को गुलामी में बेचना पड़ता है। ऐसे में उसका गोयल, जो आमतौर पर उसका सबसे करीबी रिश्तेदार होता था, वो आगे आता था
और वो कीमत चुकाकर उसे आजाद कराता था।
हाँ।
उसे या उसकी जमीन को वापस आजाद कराता था, या अगर किसी की हत्या हो जाती थी तो न्याय सुनिश्चित करना भी गोयल का काम होता था।
अच्छा, तो कुल मिला के गोयल एक कानूनी पैरोकार होता था जो किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से लड़ता था जिसके साथ अन्याय हुआ हो।
एकदम सही।
तो जॉब अनिवार्य रूप से एक वकील मांग रहे हैं जो उनका केस लड़ सके।
ये कहानी को देखने का नजरिया ही पलट देता है।
बिल्कुल पलट देता है।
अब वो आसमान की तरफ देखकर किसी फरिश्ते का इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे अदालत में एक वकील चाहिए।
हाँ, वो एक न्याय की मांग कर रहे हैं।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन के शोध में इस बात पर काफी चर्चा है कि ये गोयल आखिर हो कौन सकता है।
मैंने पढ़ा है कि डीजे क्लाइन नाम के एक विद्वान का नजरिया है कि ये शायद जॉब की अपनी ही बेगुनाही की पुकार का मानवीकरण है।
हाँ, मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन।
हाँ, मतलब जॉब कह रहे हैं कि मेरी चीख ही मेरा वकील बन जाएगी। देखिए, क्लाइन का ये विचार काव्यात्मक रूप से बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब हम उस प्राचीन समाज की कठोर वास्तविकताओं को देखते हैं ना, तो ये तर्क टिकता नहीं है।
अच्छा, क्यों नहीं टिकता?
क्योंकि जॉब एक वास्तविक और ठोस समाधान ढूंढ रहे हैं। वो एक असली सत्ता चाहते हैं जो ईश्वरीय अदालत में खड़ी हो सके। सिर्फ एक पुकार या आवाज कोई कानूनी मुकदमा नहीं लड़ सकती।
हाँ, ये बात तो है। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नियम कानून जानता हो और उनके पक्ष में गवाही दे सके।
बिल्कुल।
एक मिनट रुकिए, अगर गोयल हमेशा परिवार का ही कोई करीबी सदस्य होता था तो क्या यह संभव नहीं कि जॉब अपने ही किसी रिश्तेदार की बात कर रहे हो?
सैद्धांतिक रूप से यह संभव था, लेकिन जॉब की त्रासदी का सबसे दर्दनाक हिस्सा ही यही है कि उनके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने उन्हें छोड़ दिया है।
ओ हाँ, वो तो बिल्कुल अकेले पड़ गए थे।
सबने मान लिया है कि जॉब ने जरूर कोई बहुत बड़ा पाप किया होगा। हुँ? तभी ईश्वर उन्हें इतनी भयानक सजा दे रहे हैं। कोई भी इंसान उनके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है।
वे सामाजिक रूप से पूरी तरह बहिष्कृत हो चुके हैं।
बिल्कुल। और उनके वो तीन दोस्त जो उनसे मिलने आते हैं, और बाद में एक चौथा पात्र भी तो आता है, एलिहू। क्या एलिहू गोयल हो सकता है?
नहीं, डॉक्टर वॉल्टन इस संभावना को भी पूरी तरह खारिज करते हैं। एलिहू कहानी में बहुत देर से आता है और उसका रवैया बहुत घमंड भरा है।
अच्छा।
और सबसे बड़ी बात, गोयल का काम अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करना होता है। एलिहू जॉब को निर्दोष साबित नहीं करना चाहता, बल्कि वो जॉब को उपदेश देने आता है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि खुद ईश्वर ही वो गोयल हैं? क्योंकि बहुत से लोग यही मानते हैं कि जॉब अंत में ईश्वर से ही मदद मांग रहे हैं।
कई लोग ऐसा सोचते हैं,
लेकिन ये बात मुझे थोड़ी अजीब लग रही है।
अजीब क्यों लग रही है? पर अन्याय करने का आरोप लगा रहे हैं। जॉब के अनुसार ईश्वर ही वह जज है जो बिना किसी सबूत के उन्हें सजा दे रहे हैं।
बिल्कुल सही जा रही हैं आप।
तो क्या जॉब उसी जज से ये कह रहे हैं कि हे जज साहब, आप ही मेरी तरफ से बचाव पक्ष के वकील बन जाइए और अपने ही खिलाफ मुकदमा लड़िए? ये कैसे हो सकता है? कोई जज खुद अपने ही फैसलों के खिलाफ वकील कैसे बन सकता है?
नहीं, आपने बिल्कुल सटीक नस पकड़ी है। कानूनी रूप से और तार्किक रूप से ये असंभव
है ना?
हाँ।
एक मध्यस्थ उन दो पक्षों में से एक नहीं हो सकता जिनके बीच विवाद चल रहा है। जॉब का पूरा तर्क ही ये है कि ईश्वर ने उनके साथ घोर अन्याय किया है।
तो ईश्वर ही उनके पक्ष में उनके वकील कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल। ये विरोधाभास इस बात को पूरी तरह से नकार देता है कि जॉब ईश्वर को अपना गोयल मान रहे हैं। डॉक्टर वॉल्टन भी इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमें इसे एक कानूनी प्रक्रिया की तरह ही देखना होगा।
तो अब हम एक बहुत अजीब मोड़ पर पहुंच गए हैं। धरती पर कोई इंसान नहीं बचा, परिवार और दोस्त साथ छोड़ चुके हैं। और ईश्वर खुद वो वकील नहीं हो सकते, तो जॉब आखिर किसकी तरफ देख रहे हैं? यहां से डॉक्टर वॉल्टन का शोध एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करता है जो प्राचीन मध्य पूर्व के सोचने के तरीके को पूरी तरह से खोल कर रख देता है।
बिल्कुल। जब पृथ्वी पर कोई कानूनी मदद नहीं बचती, तो जॉब अपनी उम्मीदें स्वर्ग की ओर लगाते हैं। डॉक्टर वॉल्टन हमें समझाते हैं कि जॉब असल में डिवाइन काउंसिल यानी ईश्वरीय परिषद के किसी सदस्य से मदद मांग रहे हैं।
ये ईश्वरीय परिषद असल में क्या थी? क्या ये देवताओं की कोई संसद जैसी चीज थी?
आप इसे प्राचीन दुनिया की सुप्रीम कोर्ट कह सकती हैं।
अच्छा।
उस समय के इसराइली और उनके आसपास की सभ्यताओं का एक सामान्य विश्वास था कि स्वर्ग में एक अदालत बैठती है।
अच्छा।
वहाँ ईश्वर मुख्य न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं और उनके साथ अन्य ईश्वरीय या स्वर्गीय प्राणी भी होते हैं।
ये परिषद दुनिया के मामलों पर चर्चा करती है।
तो जॉब उम्मीद कर रहे हैं कि चूंकि पृथ्वी पर न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए उस स्वर्गीय अदालत में से कोई एक सदस्य तो ऐसा होगा जो उनकी बेगुनाही देखेगा।
हाँ, और वो उनके पक्ष में आवाज उठाएगा।
लेकिन क्या स्वर्ग का कोई प्राणी ईश्वर के खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकता था? क्योंकि जॉब के ही एक दोस्त एलिफज ने तो पहले ही इस विचार का मजाक उड़ा दिया था।
हाँ, एलिफज ने ऐसा कहा था।
उसने साफ कहा था कि स्वर्ग का कोई भी प्राणी ईश्वर के खिलाफ किसी इंसान की मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा।
एलिफाज अपनी जगह सही था कि ये लगभग नामुमकिन है, लेकिन यहीं पर इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना छिपी हुई है।
विडंबना? हाँ, एक ऐसी नाटकीय विडंबना जो अगर हम समझ लें तो कहानी का पूरा ढांचा हिल जाता है।
वो विडंबना क्या है?
देखिए, जॉब को ये नहीं पता, लेकिन हम जो कहानी पढ़ रहे हैं, हमें पहले अध्याय से ही पता है कि इस पूरी भयानक स्थिति की शुरुआत कैसे हुई थी।
कैसे हुई थी?
ये सब उसी ईश्वरीय परिषद की एक बैठक में शुरू हुआ था।
अरे बाप रे।
हाँ, स्वर्गीय अदालत की ही एक सदस्य, जिसे चैलेंजर या चुनौती देने वाला कहा गया है, उसी ने ईश्वर के सामने ये शर्त रखी थी कि जॉब सिर्फ इसलिए वफादार है क्योंकि उसे सब कुछ मिला हुआ है।
ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जॉब उसी सिस्टम से न्याय मांग रहे हैं और उसी परिषद से एक वकील मांग रहे हैं जिस परिषद ने ही असल में उनके खिलाफ ये पूरी साजिश रची है।
बिल्कुल।
वो मदद के लिए उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां से उनकी बर्बादी का फरमान जारी हुआ था। उनका अज्ञान कितना गहरा है।
और डॉक्टर वॉल्टन एक और बहुत खतरनाक दार्शनिक बिंदु की तरफ इशारा करते हैं। मान लीजिए किसी चमत्कार से जॉब को उस ईश्वरीय परिषद से कोई वकील मिल भी जाता है।
हाँ?
और वो वकील अपना काम इतनी अच्छी तरह करता है कि वो ईश्वर के सामने ये साबित कर देता है कि ईश्वर ने जॉब के साथ गलत किया है, तब क्या होगा?
अगर ईश्वर गलत साबित हो गए तो इसका मतलब होगा कि ईश्वर अन्यायी है।
बिल्कुल। और अगर ईश्वर अन्यायी है तो वे पूजा के योग्य नहीं रहेंगे।
बापरे।
इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर जॉब ये मुकदमा जीत जाते हैं तो पूरी ईश्वरीय व्यवस्था हार जाएगी, पूरा ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ जाएगा।
जॉब की जीत का मतलब होगा पूरे ब्रह्मांड के नैतिक ढांचे का ढह जाना।
हाँ, ये एक ऐसा जाल है जिसमें से निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है।
ये तो एक भयानक धर्म संकट है। जॉब सिर्फ न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उनका न्याय ब्रह्मांड की पूरी व्यवस्था को चुनौती दे रहा है।
सही कहा आपने।
शायद ये समझना इतना जटिल और बेचैन करने वाला था कि बाद की सदियों में लोगों ने इसे आसान बनाने का एक रास्ता निकाल लिया। उन्होंने इस गोयल को एक बहुत ही परिचित चेहरे के साथ बदल दिया। उन्होंने मान लिया कि जॉब यीशु की बात कर रहे हैं।
ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है। जब हम किसी पुरानी कहानी को पढ़ते हैं ना, तो हम अक्सर अपने वर्तमान विश्वासों को, अपने धर्मशास्त्र को उस पर थोपने की कोशिश करते हैं।
हाँ, ताकि वो समझने में आसान लगे।
बिल्कुल। बात की ईसाई विचारकों के लिए बहुत सुकून देने वाला था कि वे इस पूरी जटिल कानूनी बहस को हटाकर उसे यीशु के आने की भविष्यवाणी में बदल दें।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन इस पर क्या कहते हैं? क्या नए नियम यानी बाइबल के दूसरे हिस्से में कहीं भी जॉब की इस आयत को यीशु से जोड़ा गया है?
डॉक्टर वॉल्टन बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नए नियम के किसी भी लेखक ने, किसी ने भी नहीं, जॉब अध्याय 19 की इस आयत को यीशु के साथ नहीं जोड़ा है।
अच्छा, किसी ने भी नहीं?
बिल्कुल नहीं। ये विचार पूरी तरह से सदियों बाद विकसित हुआ, और इसे गहराई से समझने के लिए हमें फिर से उस कानूनी शब्द गोयल के काम करने के तरीके पर वापस जाना होगा।
तो चलिए उस अदालत वाले एनालॉजी पर वापस चलते हैं। गोयल का मुख्य काम आखिर क्या था?
एक गोयल का मुख्य काम होता है विंडिकेशन, यानी अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित करना। ये साबित करना कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वो किसी भी अपराध का दोषी नहीं है।
और जॉब को इस बात का 100% यकीन है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो बस ये चाहते हैं कि ये बात आधिकारिक रिकॉर्ड पर दर्ज हो जाए कि वे निर्दोष हैं और उनकी पीड़ा पूरी तरह से अनुचित है।
सही कहा। अब इसकी तुलना यीशु के काम से कीजिए। ईसाई धर्मशास्त्र के अनुसार यीशु का मुख्य काम जस्टिफिकेशन या माफी देना है।
माफी देना?
हाँ, यीशु उन लोगों के लिए आते हैं जो पापी हैं, जो मानते हैं कि उन्होंने गलत किया है, और वे उन्हें क्षमा करके न्याय संगत ठहराते हैं।
मुझे इसे पूरी तरह से स्पष्ट करने दीजिए। विंडिकेशन का मतलब है कि आप अदालत से बाहर निकलते हैं और जज कहता है कि आप पूरी तरह बेगुनाह हैं, आपको फंसाया गया था।
बिल्कुल।
जबकि जस्टिफिकेशन का मतलब है कि आपने अपराध किया था लेकिन आपको माफ कर दिया गया है।
बिल्कुल सटीक अंतर बताया आप।
तो ये तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत बात हो गई।
हाँ, एकदम विपरीत।
अगर जॉब ईशु जैसे किसी उद्धारकर्ता को स्वीकार करते हैं जो उन्हें माफ करने आया है, तो इसका मतलब होगा कि जॉब ये मान रहे हैं कि उन्होंने कोई पाप किया है।
बिल्कुल।
और अगर जॉब ये मान लेते हैं तो उनका पूरा मुकदमा ही खत्म हो जाएगा। उनके दोस्तों की बात सच साबित हो जाएगी कि जॉब ने पाप किया था, इसीलिए उसे सजा मिली।
यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जॉब को माफी नहीं चाहिए क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं कि उन्होंने कोई अपराध किया है। उन्हें न्याय चाहिए।
हाँ, उन्हें एक ऐसा वकील चाहिए जो उन्हें सही साबित करे, ना कि ऐसा कोई जो उनकी गलतियों पर पर्दा डाले।
इसलिए डॉक्टर वॉल्टन के अनुसार जॉब जिस पैरोकार की मांग कर रहे हैं उसकी भूमिका और माफी देने वाले उद्धारकर्ता की भूमिका बिल्कुल विपरीत है।
यहाँ मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगी जो शायद हमारे कुछ श्रोताओं को थोड़ी असहज भी कर दे।
वो क्या?
जब हम हैंडल के मसीहा को सुनते हैं, जहाँ वो बेहद भव्य संगीत बजता है, आई नो माई रिडीमर लिव्स, तो वो संगीत इतना प्रेरणादायक और इतना खूबसूरत होता है कि ये आपको अंदर तक शांति देता है।
बिल्कुल, वो बहुत ही अद्भुत संगीत है।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस बेहद खूबसूरत और कालजयी कला ने अनजाने में पीढ़ियों को जॉब के असली दर्द के प्रति अंधा कर दिया है?
ये एक बहुत गहरा सवाल है।
क्या हम अपनी आस्था और सुंदर धुनों के मोह में एक ऐसी प्राचीन कहानी की धार को कुंद कर रहे हैं जो असल में एक बिल्कुल अलग और कहीं अधिक कच्चा और गहरा दर्द बयां कर रही है?
ये कला और इतिहास के बीच का एक बहुत ही गहरा टकराव है। देखिए, कला में ये ताकत होती है कि वो भावनाओं को एक नई दिशा दे सकती है। हैंडल का संगीत अपने आप में एक मास्टरपीस है, इसमें कोई शक नहीं है।
बिल्कुल।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन यही चेतावनी देते हैं कि हमें कला को धर्मशास्त्र या ऐतिहासिक व्याख्या का चश्मा नहीं बनने देना चाहिए।
हाँ, क्योंकि वो मूल बात को छिपा देता है।
सही कहा। जब हम उस खूबसूरत संगीत के चश्मे से जॉब को देखते हैं ना, तो हम जॉब की उस भयानक चीख को नहीं सुन पाते जो उन्होंने गंदगी के ढेर पर बैठकर मारी थी। हम उनके विद्रोह, उनके गुस्से और न्याय के लिए उनकी तड़प को शांत कर देते हैं। हम कहानी को बहुत जल्दी सुखद अंत की तरफ मोड़ देते हैं, जबकि मूल कहानी में जॉब अभी भी गहरे अंधकार और पीड़ा में है।
उस अंधकार और उस गंदगी की ढेर की बात करते हैं क्योंकि कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा भौतिक और विचलित करने वाला है।
हाँ, वो हिस्सा बहुत ही दर्दनाक है।
जब जॉब कहते हैं मेरी खाल के नष्ट होने के बाद भी मैं अपने शरीर में ईश्वर को देखूंगा, तो सदियों से लोगों ने इसे मृत्यु के बाद के जीवन या पुनरुत्थान से जोड़ दिया। ये मान लिया गया कि जॉब कह रहे हैं कि मरने के बाद अगली दुनिया में सब कुछ ठीक हो जाएगा।
लेकिन डॉक्टर वॉल्टन यहाँ भी एक बहुत बड़ा मेथक तोड़ते हैं।
अच्छा।
वे स्पष्ट करते हैं कि पुराने नियम के उस शुरुआती कालखंड में मृत्यु के बाद के जीवन या शरीर के पुनरुत्थान की कोई स्पष्ट अवधारणा थी ही नहीं।
मतलब लोग पुनर्जन्म या मरने के बाद स्वर्ग में नहीं मानते थे?
नहीं, उस समय के लोग शोल में विश्वास करते थे, जो मृतकों का एक बहुत ही धुंधला और अंधकारमय स्थान माना जाता था, जहां न्याय या इनाम की कोई उम्मीद नहीं थी।
तो अगर ये पुनरुत्थान की बात नहीं है तो फिर उन भयानक शब्दों का क्या मतलब है? खाल का नष्ट होना, ये सुनकर ही सेहरन होती है।
इसका मतलब समझने के लिए हमें उस दृश्य की भयानकता को गहराई से महसूस करना होगा। जॉब किसी महल में नरम बिस्तर पर नहीं लेटे हैं, कहा जाता था, जहां कूड़ा और जानवरों का मल फेंका जाता था।
अरे बाप रे।
उन्हें सिर से पैर तक भयानक फोड़े निकले हुए हैं। वो एक मिट्टी के बर्तन के टूटे हुए टुकड़े से अपने शरीर को खुचला रहे हैं, अपनी ही सड़ती हुई बीमारी से ग्रस्त खाल को खुरच खुरच के निकाल रहे हैं।
ये तो बहुत ही भयानक दृश्य है।
ये कोई काव्यात्मक कल्पना नहीं है, ये एक भयानक भौतिक वास्तविकता है जिससे वे गुजर रहे हैं।
हे भगवान, मतलब वो सचमुच अपनी सड़ती हुई खाल को छील रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भले ही मेरी पूरी खाल इस गंदगी के ढेर पर खुरच कर निकल जाए, भले ही मैं मरने की कगार पर पहुंच जाऊं, मुझे न्याय चाहिए।
बिल्कुल। वे मृत्यु के बाद का न्याय नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि मौत के बाद कुछ नहीं है। वे एक अंतिम क्षण की मोहलत चाहते हैं।
अंतिम क्षण की मोहलत?
हाँ, वो चाहते हैं कि उनके मरने से ठीक पहले, जबकि उनकी सांसें चल रही हों, उनके इसी जीवित लेकिन क्षत विक्षत शरीर में वो स्वर्गीय पैरोकार इसी राख के ढेर पर उतरे।
वो नहीं चाहते कि ये फैसला बंद दरवाजों के पीछे हो या उनके मरने के बाद किसी और दुनिया में हो। वो चाहते हैं कि न्याय यहीं हो, इसी गंदगी के ढेर पर हो जहां पूरी दुनिया देख सके।
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जॉब ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपना खोया हुआ पैसा, अपनी भेड़ बकरियां या अपनी समृद्धि वापस चाहिए। डॉक्टर वॉल्टन जोर देकर कहते हैं कि भौतिक समृद्धि का इस पूरे पुकार से कोई लेना देना नहीं है।
तो फिर उन्हें क्या चाहिए? अगर इंसान सब कुछ खो चुका है तो वो किस चीज के लिए लड़ रहा है?
जॉब बस ये चाहते हैं कि ईश्वर की कृपा उन्हें वापस मिल जाए। वे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ईश्वरों ने एक अपराधी, एक अजनबी या एक बाहरी व्यक्ति की तरह देख रहे हैं।
उनका दर्द उस शारीरिक बीमारी से कहीं ज्यादा ईश्वर के साथ उस टूटे हुए रिश्ते का दर्द है।
बिल्कुल। वे चाहते हैं कि मरने से पहले ईश्वर उन्हें अपना लें और ये साबित हो जाए कि जॉब कभी भी ईश्वर के दुश्मन नहीं थे। वे फिर से उस घेरे के अंदर आना चाहते हैं।
ये सच में दिल दहला देने वाला है। एक इंसान जो सब कुछ खो चुका है, अपनी खाल तक खो रहा है, वो सिर्फ उस बात के लिए लड़ रहा है कि उसे ब्रह्मांड की नजरों में अजनबी न माना जाए।
हाँ।
उसे भौतिक चीजें नहीं चाहिए, उसे अपना सम्मान और अपनी जगह वापस चाहिए।
यही बुक ऑफ जॉब की असली गहराई है। डॉक्टर वॉल्टन चर्चा के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम बुक ऑफ जॉब को इंसानी पाप या दुनिया की टूट फूट का जवाब मानने की गलती करेंगे तो हम इस किताब को कभी समझ ही नहीं पाएंगे।
क्योंकि पाप और मुक्ति का समाधान तो ईसाई धर्म में यीशु के संदेश का हिस्सा है, वो एक बिल्कुल अलग विषय है।
बिल्कुल। बुक ऑफ जॉब का उद्देश्य ये बताना नहीं है कि पाप कैसे मिटेगा। इसका उद्देश्य ये पूछना है कि जब जीवन में सब कुछ पूरी तरह से गलत हो जाता है, जब आप बिना किसी गलती के पीड़ा सह रहे होते हैं, तब आप उस दुख को कैसे समझते हैं? और सबसे जरूरी बात, उस भयानक पीड़ा के बीच आप उस व्यवस्था और उस ईश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? इस किताब का असली संदेश इसी संघर्ष में छिपा है, न कि किसी आसान समाधान या माफी में।
ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम चीजों को कैसे पढ़ते और समझते हैं। हमने शुरुआत में देखा था कि कैसे एक छोटे से अनुवाद के फैसले ने, सिर्फ एक कैपिटल अक्षर ने, एक पूरी सभ्यता के सोचने का नजरिया बदल दिया।
बिल्कुल।
और डॉक्टर वॉल्टन के शोध ने हमें दिखाया कि जब हम उस प्राचीन हिब्रू दुनिया के कानूनी ढांचे, उस गोवेल और उस ईश्वरीय अदालत को समझते हैं, तभी हमें जॉब के दर्द की असली गहराई का एहसास होता है।
जब हम मूल पाठ को उस अपने संदर्भ में उसी की शर्तों पर समझने की कोशिश करते हैं ना, तभी उसकी असली आवाज हम तक पहुंच पाती है।
और इसी के साथ हम इस गहन चर्चा के अंतिम मोड़ पर आ गए हैं। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बहुत साफ हो जाती है कि इंसान हमेशा से असहज कर देने वाली सच्चाइयों को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता रहा है।
सही कहा।
हमने जॉब के उस कच्चे खून से सने हुए गुस्से को लिया और उसे एक मीठे सुकून देने वाले गीत में बदल दिया।
इंसान अक्सर ऐसा ही करता है।
लेकिन ये हमें एक और भी गहरे सवाल की तरफ ले जाता है जो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है।
वो क्या?
आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पलक झपकते ही किसी भी भाषा का अनुवाद कर देता है। ये अनुवाद बहुत ही साफ सुथरे, व्याकरण के हिसाब से बिल्कुल सही और सबको आसानी से समझ में आने वाले होते हैं।
हाँ, बहुत ही स्मूथ होते हैं।
पहले के अनुवादकों ने जॉब के दर्द को एक कैपिटल अक्षर के नीचे दबा दिया। क्या आज हमारी आधुनिक तकनीकें भी प्राचीन ग्रंथों, उन लोक कथाओं और आदिदासी साहित्यों के उस मूल कच्चे और सांस्कृतिक दर्द को एक यूनिवर्सल या सार्वभौमिक भाषा में बदलकर खत्म कर रही हैं?
बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है।
क्या एकदम सटीक अनुवाद के चक्कर में हम उस इंसान की आत्मा को ही मार रहे जो उस गंदगी के ढेर पर बैठकर अपनी चीख दर्ज करवाना चाहता था? हम सबको ये सोचना होगा कि जब कोई चीज हमें पढ़ने या सुनने में बहुत आसान और सुकून देने वाली लगती है तो क्या सच में उसका मतलब वही है, या हमने बस उसकी उस कांटेदार सच्चाई को अपनी सुविधा के लिए चिकना कर दिया है?
बहुत ही गहरा सवाल है।
सोचिएगा जरूर।